ये है मजदूरों का समाचार सारा जहां हमारा।
वैश्विक महामारी के दौर में मजदूर विरोधी नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाती सरकार। कोरोना मनुष्य से मनुष्य में फैलता है और जब एक स्थान पर मनुष्य अधिक संख्या में एकत्रित होंगे तो इसके प्रसार की आशंका अधिक होगी। यही कारण है कि नई कार्य संस्कृति तकनीकी के प्रयोग द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाने की वकालत करती है जिसमें ह्यूमन इंटरफेस न्यूनतम हो। तकनीकी का प्रयोग धीरे धीरे मनुष्य की भूमिका को नग्न और गौण बना देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के विकास के साथ ही उत्पादन, निर्माण, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में मनुष्य की उपस्थिति की अनिवार्यता कम हुई है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारखानों में पूर्ण स्वचलन को बढ़ावा दिया है और भारी पैमानों पर श्रमिकों की छंटनी भी हुई है। कई बार उनके कार्य की प्रकृति बदली है और कार्य के घंटे कम हुए हैं। तदनुसार उनके वेतन में कटौती की गई है। उनकी नौकरी पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे हैं। कॉरपोरेट जगत और उससे मित्रता रखने वाली विभिन्न देशों की सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि के प्रयोग द्वारा उनके क्षेत्रों में कंप्लीट ऑटोमेशन लाने का प्रयास कभी मजदूरों की सुरक्षा का बहाना बनाकर तो कभी गुणवत्ता में सुधार का तर्क देकर करती रही है और इसमें वे कामयाब भी हुई है। यद्यपि मजदूरों द्वारा किया जाने वाला प्रतिरोध पूर्ण स्वचलन के मार्ग में बाधक बना है। भारत जैसे देशों में ई कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, ई लर्निंग, टेलीमेडिसिन आदि जैसे जैसे अपनी जड़ें जमाते जाएंगे वैसे वैसे कर्मचारियों की छटनी और उनके वेतन भत्तों में कटौती के अवसर भी उत्पन्न होंगे। कोरोना के कारण करोड़ों रोजगार समाप्त हो गए हैं। कोविड काल की अफरा तफरी का फायदा उठाकर सरकार नई श्रम संहिताएं लेकर आई। इन नए श्रम सुधारों का मूल उद्देश्य श्रमिक संगठनों को कमजोर करना है। नए श्रम कानूनों के विषय में यह प्रचारित किया जा रहा है कि इनमें पहली बार असंगठित मजदूरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। दरअसल स्थिति इसके विपरीत है। सरकार के नए लेबर कोड्स में असंगठित मजदूरों के लिए कोई भी आशाजनक प्रावधान नहीं है। श्रम संहिताओं के नियमों को लेकर राज्यों ने नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस कारण केंद्र सरकार ने अभी वेज कोड लाने का फैसला टाल दिया है। जब तक यह श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई है तब तक संगठित मजदूरों के बीच पैठ रखने वाली ट्रेड यूनियनें अपनी तमाम सीमाओं और मतभेदों के बाद भी एक हद तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल के अपने हक के लिए लड़ेगी और इन श्रम संहिताओं के श्रमिक विरोधी प्रावधानों के विरुद्ध संघर्ष भी करेंगी। शायद वे सरकार को कुछ श्रमिक हितेशी परिवर्तन करने के लिए बाध्य भी नहीं कर ले, किंतु देश के कुल कार्यबल का 90% तो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जहां ट्रेड यूनियनों का कोई विशेष अधिकार नहीं है। सरकार के यह लेबर कोड्स इन असंगठित मजदूरों के लिए और अधिक विनाशकारी सिद्ध होंगे। अदालत ने निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन राहत राशि के भुगतान को समय सीमा निर्धारित की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत उन मजदूरों को पेंशन और अनुग्रह राहत राशि के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जिनके दावे लंबित है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें दावा आवेदनों में कर्मियों के बारे में श्रमिकों को इंगित किया गया है, कमी को ठीक किए जाने के बाद जब जवाब मिले तो उसके 3 माह के भीतर बोर्ड को दावे पर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि उन मामलों में जिसमें दावे प्रक्रियाधीन हैं, उन्हें 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 553 और श्रमिकों द्वारा किए गए नए दावों से संबंधित मामलों को अदालत संज्ञान में लाया गया था। इसके बारे में न्यायमूर्ति सिंह ने बोर्ड को आवेदनों को 3 महीने के भीतर जाँच पड़ताल करने और संसाधित करने का निर्देश दिया। वहीं जिसमें श्रमिकों को मौद्रिक लाभ प्राप्त होना है ऐसे मामलों को अदालत ने 1 महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से वितरित करने का निर्देश दिया। अदालत ने ये निर्देश निर्माण श्रमिकों की ओर से दायर कई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया। इन अर्जियों में इन श्रमिकों ने उस पेंशन के लिए अनुरोध किया था जो उन्हें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम के तहत मिलनी है। साथ ही श्रमिकों ने दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए महामारी के दौरान घोषित 5,000 रुपए की राहत राशि के लिए भी अनुरोध किया था। अमेज़न अमेरिका में अपने 5 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डाला था दबाव। अमेज़न ने पिछले सप्ताह ऐलान किया कि वह अमेरिकी ऑपरेशंस में शामिल 5 लाख से ज्यादा वर्करों की सैलरी में 50 सेंट से $3 प्रति घंटे के बीच इजाफा करेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस अपील के बाद कंपनी ने ऐसी घोषणा की है जिसमें उन्होंने कंपनियों से कहा था कि वर्करों का प्रति घंटे न्यूनतम भत्ता बढ़ाया जाए। वर्करों का प्रति घंटे न्यूनतम भत्ता $7.5 है जो 2009 में तय हुआ था। इसे साल 2025 तक बढ़ाकर $15 करने का विचार है। CNBC वेबसाइट के मुताबिक अमेज़न में ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज का वाइस प्रेसिडेंट डार्सी हेनरी ने कंपनी की वेबसाइट पर अपने ब्लॉग में लिखा है कि अमेज़न वर्करों के लिए इंसेंटिव के तौर पर $1 अरब खर्च करेगी। वर्करों के वेतन में यह बढ़ोतरी इस साल मई में या फिर जून से लागू होगी। अमेज़न ने 2018 में अपने सभी अमेरिकी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम भत्ता प्रति घंटे $15 किया था। उसने यह फैसला राजनेताओं और वर्करों के लिए काम करने वाले समूहों के दबाव के बाद लिया था। ई कॉमर्स के दिग्गज अमेज़न वॉलमार्ट के बाद अमेरिका में रोजगार देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पूरे देश में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी है।
तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के चर्चित समाचार। अगर आप ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं तो अभी दबाएं नंबर 5। साथ ही अगर आपके पास श्रमिकों से जुड़ी कोई भी खबर, जानकारी या कोई अनुभव है तो नंबर 3 दबाकर जरूर बताएं। शुक्रिया।